शांति। आज की प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी जी का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। दीदी का लौकिक और अलौकिक दोनों ही जन्म विदेश की धरनी अफ्रीका में हुआ और फिर दोनों ही रीति से 1980 में भारत में ट्रांसफर हुए। 1980 में भारत में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया, तो 1980 से लेकर 1992 तक मुंबई विले पार्ले और हैदराबाद कनेक्शन में रह के आपने ईश्वरीय सेवा की और फिर 1993 का वर्ष आपके जीवन के लिए वो स्वर्णिम अवसर रहा जब आप हेड क्वार्टर में आके मधुबन निवासी बने। तब से लेकर आज दिन की आध्यात्मिक यात्रा में आपने बहुत बुलंदियों को छुआ है। सबसे पहले जब आप यहाँ आए तो SML की ट्रेनिंग विदेश के भाई दे रहे थे, उसको आपने अच्छी तरह से सीखा और भारत की भाषा में डालकर सब तक पहुँचाया। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज जैसे कि टाटा एंड स्टील, ONGC, BSNL, अमूल आदि आदि स्थानों पर आपने सेल्फ मैनेजमेंट लीडर स्कॉलरशिप कोर्सेस कराए और फिर ब्राह्मण परिवार ने टाइटल दिया SML वाले उषा दिबहन। उसके बाद आपने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, उनकी कहानियों का आध्यात्मिक रहस्य अर्थ सहित आपने बताया, तो लोगों ने आपको कहा शास्त्रों की कहानी सुनाने वाली उषा बहन। फिर आपने गीता का गहन अध्ययन गच्छित होकर किया और उसी पर आपके अनेक अनेक व्याख्यान होने लगे और लोगों ने कहा गीता के भगवान की बात करने वाली उषा बहन। उसके बाद बाहर वालों ने आपकी प्रतिभा को देखकर डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की और तब से लोग कहने लगे डॉक्टर उषा बहन आप बहुत ही प्रतिभा से युक्त हमारे बीच में, आवश्यक ही इतनी बुलंदी इतने शिखर पर व्यक्तित्व तब पहुंचता है जब उसके जीवन में एकांत का स्थान होता है और जब उसके जीवन में एकाग्रता का अनुभव होता है। तो कैसे एकांत और एकाग्रता को हम भी प्राप्त करें उस पर अपने अनुभव से प्रकाश डालेंगे आदरणीय उषा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के बेहद के प्यारे मधुबन आंगन में भट्टी करने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। अच्छी रही भट्टी, सभी ने आनंद लिया भट्टी का, एकांत का, एकाग्रता का, बाबा के कर्म भूमि मधुबन की ये पावन भूमि पर अपने आप ही योग लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाबा का विशेष वरदान है इस भूमि को, और क्योंकि साकार बाबा ने तपस्या की हुई है यहाँ पर, तो जो भी भाई बहने आते हैं हर एक का ये अनुभव होता है कि इतना नेचुरल योगी बन गए। नेचुरल योगी बने ना, कि मेहनत वाले योगी बने, नेचुरल योगी बने, नेचुरल योग लग जाता था। और इसीलिए अब आगे भी नेचुरल योगी बनेंगे या मेहनत वाले योगी बनेंगे, है ना? तो बाबा के इस वरदान भूमि से ऐसा वरदान अपने अंदर भर करके जाना कि वहां जाने के बाद भी यहां की जो शक्ति है, यहाँ के जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन और शक्ति से आगे भी नेचुरल सहज सरल योगी आप बन जाओ, है ना? आज तो लास्ट दिन है, है ना? कल जाना है क्या? आज जाना है, कल जाना है, आना है, आना है, मधुबन जाना है, जाना है। और अब पूरा भी हो गया, 3 दिन कहाँ गए पता चला। और देखो हमें भी कितना अच्छा सौभाग्य मिला 2.5 मास के बाद मधुबन में भट्टी कराने का, है ना? ये पहला ग्रुप है आने के बाद। 2 महीना तो अमेरिका की यात्रा पर थे और आने के बाद पहला ग्रुप आप लोगों का ही भट्ठी कराने का भी एक चांस मिल गया। तो आज का जो टॉपिक रखा है बहन जी ने, बहुत सुंदर रखा है, एकांत और एकाग्रता। अब जब इसका अनुभव कर लिया तो उसके ऊपर क्या सुनाए, और क्या सुनाए? जिसका अनुभव हो गया हो तो और कुछ सुनाने का रह जाता है? कुछ रह ही नहीं जाता है। लेकिन फिर भी अगर कहे कि एकाग्रता को अगर पहले ले, क्योंकि एकांत जहां होगा तो एकाग्रता सहज हो ही जाएगी। लेकिन एकाग्रता की बात जहां करे तो ये एकाग्रता आज हम बच्चों के लिए बाबा का सहज एक वरदान है। दुनिया में लोगों की बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है, इतना मन बुद्धि उनका भटक रहा है, इतनी चिंताओं में जी रहे हैं, इतनी व्यर्थ की बातें उनके मन के अंदर उभरती है, जो उनको अगर 5 मिनट भी एकाग्र करने के लिए कहे तो कितना मुश्किल है, और हम बच्चों के लिए सहज है। और सहज इसलिए है क्योंकि हमें वरदान मिला है बाबा का, इसलिए सहज है। तो एकाग्रता की बात अगर करें तो कितने प्रकार की एकाग्रता चाहिए? योग करते समय कितने प्रकार की एकाग्रता की आवश्यकता है? क्या कहेंगे? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 रूप की एकाग्रता चाहिए जब भी योग में बैठो। सबसे पहली एकाग्रता है जिसको हम कहते हैं शारीरिक एकाग्रता। अगर बार बार तन डोलता रहे, हिलता रहे, तो पता चलता है कि यह व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं है, है ना? तो शारीरिक है कि योगी का चित्र आप सामने ले आओ, तो योगी का चित्र जो बैठा हुआ है तो उसकी शारीरिक एकाग्रता भी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जितनी उसकी शारीरिक एकाग्रता है तो मन भी फिर धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। अगर शारीरिक एकाग्रता नहीं, हिलते डोलते रहे, इधर उधर होते रहे, तो उससे मन की एकाग्रता विकसित नहीं होती है। इसीलिए योगी माना ही जिसका तन या इंद्रियां स्थिर हो, शांत हो और शीतल हो। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करने के लिए कहा। और योग का पहला मतलब ही है कि जहां इंद्रियों के ऊपर अधिकार हो। अगर इंद्रियों पर अधिकार नहीं है तो मन के ऊपर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मन हमेशा इंद्रियों का ही तो गुलाम बन करके चला है। इसलिए जितना हमारी इंद्रियों को शांत रखते हैं, शीतल रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, उतनी शारीरिक एकाग्रता हमारी नेचुरल आ जाएगी। और तन अगर शांत है, शीतल है, स्थिर है, तो फिर दूसरा कदम है जिसको कहा जाए मन की एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता। तो पहली शारीरिक एकाग्रता, दूसरी है मानसिक एकाग्रता। मन की एकाग्रता, तो पहले तो मन को यह समझे हम मन के आदत को समझे कि मनुष्य का मन कहां भटकता है, कहां भटकता है, पास्ट में भटकता है और व्यर्थ में भटकता है और संबंधों में भटकता है और अटैचमेंट में भटकता है, वस्तु वैभव में भटकता है और मोबाइल में भटकता है। सही बात कही, मोबाइल में भटकता है। मनुष्य का मन हमेशा तीन बातों में भटकता है। एक है इच्छाओं में भटकता है, है ना, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। मोबाइल में भी देखता है तो क्या निकला है, ऑनलाइन क्या मंगा सकते, तो इच्छाओं में भटका ना। तो सबसे पहले मनुष्य का मन भटकता है इच्छाओं में। दूसरा, मन भटकता है संबंधों में, कोई ना कोई देहधारी की याद, उसमें मन भटकता है। और तीसरा, मन भटकता है व्यर्थ, चाहे वो पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, चाहे कोई भी आगे पीछे की बात हो, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, उसमें भटकता है, ये व्यर्थ की बातों में भटकता है। तो ये तीन बातों में हमेशा मन भटकता है इंसान का। अब उसके लिए पहली बात, व्यर्थ से मुक्त करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को समर्थ, समर्थ मन को बनाना पड़े। व्यर्थ से, व्यर्थ में इसलिए भटकता क्योंकि अच्छी बातें सोचने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए पास्ट की बातों में, व्यर्थ की बातों में भटकता है। तो सबसे पहले बाबा ने आकर के हम बच्चों का मन समर्थ और शक्तिशाली और सकारात्मक बनाने के लिए प्रेरित किया। और उसके लिए बाबा ने खजाना दिया हमें मुरली का, ज्ञान का, है ना। ज्ञान वो समर्थ शक्ति है, वो खजाना है, वो खुराक है जिससे हमारा मन शक्तिशाली बनता है, सकारात्मक बनता है और समर्थ बनता है। तो इसीलिए बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, क्योंकि अगर मुरली मिस होती है, माना समर्थ की शक्ति से हम दूर हुए, हमारा कनेक्शन समर्थ से कट गया, और इसलिए समर्थ से कटेगा तो जो मन के संस्कार है भटकने के, वो बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने तो अभी इतनी सुविधा कर दी है कोविड के बाद तो, कि हरेक के मोबाइल में भी क्या कितने क्लासेस आते हैं, कितने ना, कितने ज्ञान के खजाने की बातें आती है, ताकि उन बातों को भी हम सुन करके अपने मन को क्या करें, शक्तिशाली बनाते जाएं। तो व्यर्थ से मुक्त होने की विधि है समर्थ ज्ञान के खजाने को क्या करो, चिंतन में लाते रहो। जितना ये चिंतन में लाते रहेंगे, धीरे धीरे मन भटकने के द्वार उसके बंद हो जाएंगे और उसमें रमने लगेगा। जैसे आज व्यर्थ चिंतन करना अच्छा लगता है कईयों को, बैठे हैं तो घंटों निकल जाता है, है ना, व्यर्थ चिंतन करने में, कहां 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 की बात को लेकर के कहां पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए मन जो है उसमें हीरा हुआ था और वो बातें सोचने में भी उसको अच्छी लगती थी, उसमें कंफर्टेबल हो गया था, तो एक समर्थ ज्ञान का चिंतन करने में हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो व्यर्थ से फ्री हो जाए और समर्थ चिंतन में लगे। शुरू शुरू में लोगों को बोरिंग भी लगता है, क्या वही ज्ञान का चिंतन करते रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसकी गहराई में जाने लगते हैं उसके बाद ज्ञान के बात के अलावा और कोई बात अच्छी नहीं लगती है, ज्ञान ही अच्छा लगता है, ज्ञान की बातें करो। और इसीलिए जहां से ज्ञान की बातें मिलती है वहां आनंद आता है, खुशी होती है, प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कल की जो बाबा की मुरली है संडे की, बाबा ने यही कहा है बच्चों को कि बच्चे अपने प्राप्तियों को सन्मुख रखो, कोई ना कोई प्राप्ति, क्योंकि बाबा ने वैसे तो ज्ञान की बहुत पॉइंट सुनाई है हमें, अथाह ज्ञान का खजाना हमारे पास है, लेकिन अगर उस ज्ञान को भी हम अनुभव में नहीं लाए, उससे प्राप्ति नहीं किया, अपने जीवन में बेनिफिट नहीं किया, तो वो ज्ञान खाली ज्ञान रह जाता है ना, अनुभव में नहीं आता है। इसलिए अनुभव में लाने के लिए ज्ञान की एक एक पॉइंट का प्रयोग करना और प्रयोग करते हुए उसका अनुभव करना, तो मन धीरे धीरे समर्थ और शक्तिशाली बन जाएगा। समर्थ और शक्तिशाली बनेगा तो स्थिर होगा, है ना। खाली घड़ा क्या करता है, हिलता डोलता रहेगा, है ना, तो मन भी इधर उधर भटकता रहेगा। जिसका मन बहुत भटकता है इसका मतलब कितना खालीपन है उसके अंदर, भरा हुआ ही नहीं है। तो पहले तो बाबा ने हमारे मन को स्थिर करने के लिए ज्ञान के खजाने से भरा, और रोज मुरली सुनते हैं तो रोज मुरली सुन सुन करके मन को शांत और शीतल करना आ गया, है ना। फिर दूसरा है इच्छाएं। अच्छा, इच्छाओं में जो भटकता है उससे मुक्त करने की विधि क्या है, तो उससे मुक्त करने की विधि है कि ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, भगवान ने सब कुछ दे दिया है हमको। आज दुनिया में लोग अगर इधर उधर जाते हैं या ये चीजें लाते हैं वो करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब किसके लिए, ये इच्छाएं जो है वो किस लिए, कहीं ना कहीं उनसे इंसान को खुशी मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, ये फीलिंग का ही तो अनुभव करने के लिए वो इच्छाओं के अंदर जाता है, उसमें रमने लगता है, ये होगा तो अच्छा होगा, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, है ना। और इसीलिए तो सुख सुविधा के सारे साधन खरीद करता है, इसीलिए करता है ना, ताकि उससे सुख की अनुभूति करे, आनंद की अनुभूति करे। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना सुख दे दिया है, अतीन्द्रिय सुख, है ना, वो तो इंद्रियों के सुख के पीछे, हमको तो बाबा ने अतीन्द्रिय सुख दे करके कहा कि इतना खजाना बच्चों को दिया है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अभी का तो गायन है ना, अभी के लिए ही तो कहा गया है। तो जब अप्राप्त नहीं कोई वस्तु तो मन को भटकने की मार्जिन ही खत्म, सब कुछ है हमारे पास, क्या नहीं है। और तीसरा, संबंधों में भटकता है, उससे फ्री करने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई कि बच्चे सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो, सर्व संबंधों का सुख एक मुझसे लो। दुनिया के संबंध आज है कल नहीं भी है, या अगर है तो भी स्वार्थ युक्त है। और जैसे ही वो स्वार्थ पता चलता है कि क्या महसूस होता है, जैसे ही दिखाई दिया स्वार्थ तो क्या महसूस होता, कितनी स्वार्थ भरी दुनिया है, अपनों को भी नहीं छोड़ते, आता है ना मन के अंदर। और भगवान के साथ का जो संबंध है वो हमें निस्वार्थ, इतना निस्वार्थ बाबा प्यार देता है, पुचकार देता है, इतना सुख देता है, सुकून देता है ना। तो इस संबंध में संपूर्णता है, तो इस संबंध का आनंद लेते रहो। तो तीनों भटकने के द्वार को बाबा ने बंद कर दिया, और ये तीनों द्वार जैसे ही हमारे बंद होते हैं कि मन एकदम स्थिर, मन में स्थिरता आती है ना, गंभीरता आती है, ठहराव आता है, और ये ठहराव ही तो मन की एकाग्रता को ले आएगा। इसीलिए कहा कि मानसिक एकाग्रता के लिए मन को, मन तो बहुत जन्मों से लेकर चंचल है, तो मन को बांधना जरूरी है कि नहीं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए। तो उसके लिए मन को क्या देवे, तीन चीजें देनी है बांधने के लिए, लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा। लक्ष्य मन को दे दो, बाबा ने आते ही हम सभी को लक्ष्य दे दिया कि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों को क्या बनना है, फरिश्ता बनना है ना, फरिश्ता माना हल्का, तो फरिश्ता बनना है अर्थात हल्कापन। लक्ष्य दे दिया, ऊंचा लक्ष्य, सबसे ऊंचा लक्ष्य, ब्राह्मणों को देवता बनने का लक्ष्य नहीं दिया है, बात समझना बहुत गहरी है। ब्राह्मणों को जो लक्ष्य मिला है ना, फरिश्ता बनने का, देवता बनने का लक्ष्य नहीं है हमारा, देवता तो बन जाएंगे, ये प्रारब्ध है, लेकिन हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना। क्यों ऐसा कहती हूं मैं, मुरली में तो आता है तुम्हें देवता बनना है, देवता बनना है, देवता बनना है, फिर किसको देवता बनना था, ब्राह्मणों को नहीं, अभी तक समझे नहीं बात को, हाँ? अभी तक समझे नहीं। देखो ब्राह्मण है चोटी, देवता है मुख, लक्ष्य कभी नीचे का दिया जाता है या ऊपर का दिया जाता है? तो ब्राह्मणों को देवता बनने का लक्ष्य है, देवता तो मुख हो गया ना, समझो बात को, बहुत गहरी बात है ना। इसीलिए कभी भी ये नहीं कहना ब्राह्मण देवता बनना है, नहीं, ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है। तो देवता किसको बनने का लक्ष्य दिया है, मनुष्य से देवता, मनुष्य नीचे पैर, शूद्र। तो जब तक हम मनुष्य थे, ब्राह्मण नहीं बने थे, तब हमको ये लक्ष्य दिया गया कि हे बच्चे मनुष्य से देवता बनना है। और बाबा की मुरली में सुनना, बाबा ने कभी भी ये मुरली में ये लाइन नहीं कही ब्राह्मण सो देवता, नहीं, मनुष्य से देवता बनना। मनुष्य जीवन जो था उससे देवता श्रेष्ठ है, मनुष्य नीचे पैर है, पैर से हाँ मुख बनना है ना, नर से नारायण बनना है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद फरिश्ता बनना है। और ब्राह्मण बन करके जो हम कर्म करते हैं तो इतने श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं, जो देवता तो प्रलब्ध हो गई। फिर हम पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, हम फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और शरीरी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये बात याद रखना, ब्राह्मणों का लक्ष्य है फरिश्ता, है ना? ठीक। तो इसीलिए मन को लक्ष्य दे दो, बहुत ऊंचा लक्ष्य। लक्ष्य मिल गया ना, तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना उसके लिए आसान है, है ना? इसीलिए हमारा मन को लक्ष्य देना बहुत जरूरी है। दूसरा, फिर उसी अनुसार लक्षण कि फरिश्ता, बाबा कहते हैं फरिश्तों की चाल कैसी है, फरिश्तों का बात करना कैसे है, इशारों से है, ज्यादा शब्दों का भी प्रयोग नहीं। फरिश्ता एकदम हल्का है, उड़ने वाला है, ये लक्षण है ना। अच्छा, कितनी बातों में लाइट बनना है, फरिश्ता जो है लाइट है, तो कितनी बातों में लाइट बनना है, संकल्पों में लाइटनेस। भारी किससे होते हैं, व्यर्थ और नेगेटिव से भारी होते हैं, तो संकल्पों में लाइटनेस लाना है, फिर वाणी में लाइटनेस। वाणी में लाइटनेस माना खुशी देने वाले बोल निकले, किसी के जीवन में उमंग उत्साह भरने वाले बोल निकले। लाइट कर दो, कोई भारी हो करके आए लाइट हो करके जाए, ऐसे आपके शब्द हो, इतने मधुर शब्द हो जो उसका सारा टेंशन समाप्त हो जाए। दुनिया के अंदर तो लोगों को टेंशन बहुत है, लेकिन बाबा क्या कहते, वो आपके पास आए और एकदम हल्का हो जाए, वो भी कहे कि पता नहीं आपके पास क्या है, आप बोलते भी नहीं हो, बस आपके बाजू में बैठता हूं ना मैं, लाइट हो जाता हूं, है ना? ऐसे लाइटनेस हमारे वाणी में हो। किसी बेचारा निरुत्साहित होकर के आए, उसको उमंग उत्साह भर दो, खुशी के बोल बोलो उसको, उसको अंदर से जैसे कि एनर्जी मिल जाए, है ना? तो वाणी में लाइटनेस, उसके बाद कर्म में लाइटनेस कैसे आएगी, कर्म में लाइटनेस कैसे आएगी? तो कर्म में लाइटनेस के लिए करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। जहां मैंपन आया तो भारी हो जाएंगे, कर्म में अगर मैंपन आया तो भारी हो गए, लेकिन बाबा करा रहा है मैं तो निमित्त हूं, तो लाइटनेस। सारा दिन में काम करेंगे ना, थकावट नहीं लगेगी, करण करावनहार बाबा करा रहा है, तो कभी भी थकावट की अनुभूति नहीं होगी। तो ये है कर्म में लाइटनेस। जैसे मम्मा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है ना, लाइटनेस। इसीलिए सारा दिन भी सेवा करने के बाद भी महसूस होगा लाइट है एकदम, कोई भारीपन नहीं, मैंपन ही नहीं, मेरापन ही नहीं, तो लाइट कर्म में। चौथा है स्वभाव में लाइटनेस, बहुत जरूरी है। स्वभाव संस्कार में लाइटनेस, अर्थात स्वभाव संस्कार को लाइट बनाने के लिए सरलता और सहजता हमारे स्वभाव में आ जाए। दुनिया के लोगों के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेडनेस है, पता ही नहीं चलता है अंदर क्या है बाहर क्या है, है ना? कहते हैं ना, इंसान को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है, पता ही नहीं चलता है इंटेंशन क्या है अंदर और वाणी क्या बोल रहा है। स्वभाव इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बाबा ने आते ही हमारे स्वभाव संस्कार को लाइट कर दिया, सरल स्वभाव, सहज स्वभाव, जितना इजी नेचर होगा, जितना फ्लेक्सिबल होंगे उतनी लाइटनेस आएगी। जिसको कहा जाए जिद्दीपना न हो, अड़ना न हो, लेकिन सब चलता है बाबा के घर में, है ना। तो इसीलिए सरलता और सहजता ये हमें लाइट कर देती है, स्वभाव संस्कार हमारा लाइट हो जाता है। और फिर है संबंधों में लाइटनेस, जहां मोह नहीं, जहां किसी से लोभ की वृत्ति नहीं, तो वहां लाइटनेस। संबंधों में, संबंध संपर्क में जब आते हैं, हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, तो लाइट रहेंगे, सामने वाला भी लाइट, हम भी लाइट। जहां स्वार्थ है, अपेक्षा है, वहां भारी होना ही है। तो बाबा कहते संबंध संपर्क में भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखो, जो मिला जैसा मिला बहुत अच्छा, शुक्र करो बस मिला तो सही, है ना। तो इसीलिए कहा संबंध संपर्क में भी कोई अपेक्षा नहीं, ये मेरी ऐसा सेवा करे, ये मेरे लिए ऐसा करे, ये मेरे लिए इतना करे, इतना करे, इतना तो करना ही चाहिए, नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। जितना किया उतना शुक्र मानो कि किया तो सही। कलयुग में इतना कोई कर लेता है तो भी क्या कहेंगे, शुक्रिया, शुक्रिया, है ना। और जहां आपके भाग्य में अपने आप चल के आएगा ही, अपेक्षा रखने की जरूरत ही नहीं है, है? नहीं। तो ये लाइटनेस का लक्षण ये हमें, क्योंकि फरिश्ता बनने का लक्ष्य है तो उसके हिसाब से लक्षण, तो ये पांचों बातों में लाइटनेस, मन में, वाणी में, कर्म में, स्वभाव संस्कार और संबंध संपर्क में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लक्ष्मण रेखा है ना, मन को बांधना जरूरी है, भागता रहता है ना, इसीलिए संस्कार जो इतने जन्म के पड़े हैं तो भाग जाता है घड़ी घड़ी, तो इसलिए उसके लिए लक्ष्मण रेखा खींच लो। और लक्ष्मण रेखा जो बाबा ने हम बच्चों को नियम मर्यादाएं जो दी है हर बात के लिए, सुबह अमृत वेले से उठने से लेकर रात्रि सोने तक के जितने भी नियम मर्यादाएं बाबा ने हम बच्चों को दी है, उन मर्यादाओं में उसको बांध दो। उसमें 19-20 नहीं करो, इतना चलता है, होता है, कौन संपूर्ण बनाए, नहीं, उसमें 19-20 करेंगे तो आपको नुकसान है, आपको नुकसान होगा और किसी को नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। इसीलिए ये लक्ष्मण रेखा थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी तो मन सीधा चलेगा। अगर जरा मन कन्विंस करने का प्रयत्न करेगा, अरे सब करते हैं कोई बात नहीं, तुम भी कर लो, है ना, मन कन्विंस करने का प्रयत्न करेगा आत्मा को कि अरे कोई बात नहीं, आज अमृत वेला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी ना, फिर ये डनलप का तकिया भी देता है, तबीयत ठीक नहीं थी ना, सोए रहे तो कोई खर्चा नहीं। तो मन को इसीलिए बांधना जरूरी है, उसकी कोई बात को सुनना नहीं है, उसकी कोई बात को क्या, जहां वो कन्विंस करने का प्रयत्न करे उसको तो बिल्कुल नहीं सुनना है। ये लक्ष्मण रेखा टाइट करो, आपका फायदा है, नुकसान होगा तो आपका होगा, नहीं तो और किसी का नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये तीन चीजें मन को देनी है, मन मानसिक एकाग्रता के लिए, ठीक है। अच्छा, तो शारीरिक एकाग्रता हो गई, मानसिक एकाग्रता हो गई, तीसरी एकाग्रता कौन सी चाहिए, तीसरी एकाग्रता कौन सी चाहिए, बौद्धिक एकाग्रता। मन बुद्धि साथ साथ चलते हैं। मन बुद्धि को कन्विंस करने का प्रयत्न करता है, कभी कभी बुद्धि मन को कन्विंस करने का प्रयत्न। इसीलिए योग में मन बुद्धि दोनों, ये दोनों पिन लगानी पड़ती है ना, प्लग करना पड़ता है। तो बौद्धिक एकाग्रता, और बौद्धिक एकाग्रता के लिए हमारी जानकी दादी बहुत अच्छी बात बताती थी, क्लीन क्लियर एंड प्योर। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? क्लीन क्लियर और प्योर, एकदम क्लीन कर दो बुद्धि को, किचड़ा अंदर का साफ करो। बहुत जन्मों का किचड़ा अंदर भरा है, उभरता रहता है ना, और वो हमारे मन को भी विचलित करता रहता है। इसलिए बुद्धि को क्लीन करो। दूसरा, क्लियर करो, मूंझे हुए नहीं रहो, अंदर मूंझ ना हो, लेकिन हमारा फोकस क्लियर हो, एकदम स्पष्ट, नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के बादल अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जैसे पूरा। तो क्लीन क्लियर और प्योर, उसके अंदर इतनी पवित्रता की शक्ति भर दो, जो बुद्धि योग हमारा सहजता से बाबा के साथ लग जाए, इधर उधर जाए ही नहीं। तो इसीलिए बुद्धि को प्योर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन बुद्धि का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए एक को लूज छोड़ दिया तो दूसरे को भी एकाग्र होने नहीं देगा, है ना। दूसरी बात, बुद्धि को कैसी बनाओ? कंस्ट्रक्टिव बुद्धि बनाओ, डिस्ट्रक्टिव नहीं। अब कंस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको कहा जाता है? तो जो बुद्धि सुई धागे का काम करता है। डिस्ट्रक्टिव बुद्धि माना कैंची का काम करना। तो आज कई बार दुनिया के अंदर हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, दो जने बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तो उसके बीच में कैंची कैसे मारना, ये उनको आता है ना। डिस्ट्रक्टिव बुद्धि कहेंगे ना, संबंधों को तोड़ने का काम करते हैं। और वो डिस्ट्रक्टिव बुद्धि ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में डाल देंगे पॉइजन, जो फिर वो संबंधों में शक, डाउट्स, है ना, अनुमान, ये सब क्रिएट होना शुरू होते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम प्योर बुद्धि वाले, तुम्हारी बुद्धि कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, टूटे हुए को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का काम तो हमें कभी नहीं करना चाहिए। तोड़ने का काम करना ये बाबा के बच्चे नहीं है, ये असुरी बच्चे ही है, असुर ही तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चे जो है हंस बुद्धि वाले हो, मोती चुगने वाले हो, कंकड़ पत्थर चुगने वाले नहीं, तो तुम बच्चे कभी भी किसी की बुद्धि को, टूटी हुई बुद्धि को जोड़ने का काम करो, सुई धागे का काम करो, कैंची का काम नहीं करो, है ना। हंस बुद्धि है ना, दिव्य बुद्धि है। बाबा ने हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाया है, है ना। तो इसीलिए गीता के अंदर भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ, सारा पूरा स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है? प्रज्ञ माना बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि वाला कौन हो सकता है? तो उसके लिए यही बात बताई कि जितनी बुद्धि की दिव्यता हो, हमें ब्राह्मण जन्म मिलते ही बाबा ने हमें दो वरदान दिया, पहला दिव्य बुद्धि का वरदान और दूसरा दिव्य दृष्टि का वरदान। ये दो वरदान ब्राह्मणों को जन्मते ही बाबा देता है, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि माना साक्षात्कार करना नहीं, लेकिन ज्ञान की वो चीजें जो ये आंखें नहीं देख सकती है, उसको देखने की क्षमता हमारे अंदर आ गई है। जैसे परमधाम क्या है, बुद्धि के चक्षु से देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, ये आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जन्मते ही हमें ये वरदान मिला दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का, उसी से हमने परमधाम को देखा। सत्युग त्रेता क्या होता है, 16 कला संपूर्ण स्थिति क्या होती, सब देख सकते हैं नहीं देख सकते, अर्थात बुद्धि से समझने की शक्ति आपके अंदर आ गई। तो ये दो वरदान को बार बार यूज करो, जितना यूज करेंगे उतना ये बुद्धि जो है ना विकसित होंगी, अगर यूज नहीं करेंगे तो ये विकसित नहीं होंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे योग नहीं लगता है ना, मधुबन की चार धाम की यात्रा करो, कहते हैं ना ये भी योग है, चारों धाम में चक्कर लगाओ, भले कहां भी बैठे हो, विश्व के कोई भी कोने में बैठे हो। तो बुद्धि क्या करती है, बाबा का कमरा देखती है, झोपड़ी देखती है, शांति स्तंभ देखती है ना, और हिस्ट्री हॉल देखती है, चारों धाम में चक्कर लगाते, बुद्धि से चक्कर लगाते हैं ना, ये भी योग है। तो बुद्धि की एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता लाने के लिए बुद्धि को दिव्य, और जितना उसको यूज करेंगे ना, क्योंकि अंत में इसी बुद्धि के द्वारा जो बाबा साक्षात्कार कराएगा, बहलाएगा, उसमें हम माहिर हो जाएंगे। बाबा की कुछ समय पहले बाबा की मुरली चली कि जैसे आदि में बाबा ने बहलाया, बाहर हंगामा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पार्टीशन हो रहा था, लोग खूनी नाहक खेल चल रहा था, और बाबा के बच्चे चार दीवारियों में साक्षात्कार में घूम रहे थे, देख रहे थे, मौज कर रहे थे ब्राह्मण। और इसी तरह बाबा ने कहा अंत में पुनः बाबा बहलाएगा, लेकिन किसको बहलाएगा, जिसके बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जिसकी बुद्धि कंस्ट्रक्टिव होगी, जिसकी बुद्धि क्लीन क्लियर प्योर होगी, जिसकी बुद्धि दिव्य होगी, उसको सहजता से वो उन दृश्यों के अंदर, वो साक्षात्कार में सहजता से जाएंगे, तो बाहर की सीन सीनरी उनको इफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए इसका प्रयोग करो, चार धाम में चक्कर लगाओ, है ना, चार धाम में बाबा ने क्या क्या प्राप्ति होती है ये भी बताया हुआ है, हिस्ट्री हॉल में क्यों जाना होता है, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए, अच्छा झोपड़ी में क्यों जाना होता है, हाँ रुरिहान करने के लिए, हाँ उदासी से मुक्त होने के लिए, अच्छा बाबा के कमरे में क्यों जाना होता है, रुरिहान करने के, और शांति स्तंभ में क्यों जाना होता है, शक्तिशाली बनने के। अच्छा ये चार धाम को, ये चारों धाम को नाम दिए हैं बाबा ने, याद है, चार धाम को चार नाम दिया है बाबा ने, क्या नाम है, देखो व्यर्थ से मुक्त होने के लिए कहा हिस्ट्री हॉल में जाना है, तो उसको बाबा ने नाम दिया है समर्थ धाम, समर्थ धाम है। अच्छा शांति स्तंभ को कहा है, शांति स्तंभ को बाबा ने कहा है महाधाम, ये महाधाम है। फिर बाबा के कमरे को कहा है, बाबा के कमरे को कहा है स्नेह धाम, स्नेह धाम। और बाबा की झोपड़ी को कहा है स्नेह मिलन का धाम, स्नेह मिलन का धाम, उदासी से मुक्त हो जाना है ना। तो ये चार धाम को चार, महाधाम, समर्थ धाम, स्नेह धाम और स्नेह मिलन का धाम। तो ये चार धाम को बाबा ने ये नाम दिए हैं। ये धाम में विचरण करते हैं जब बुद्धि से, तो हमारी बुद्धि दिव्य होने लगती है। इसलिए बुद्धि को दिव्य बनाना बहुत जरूरी, ताकि अंतिम समय उसी दिव्य बुद्धि के द्वारा ही तो हम साक्षात्कार के लीला को सहजता से देख सकेंगे। तो बौद्धिक एकाग्रता, कभी बाबा कहते हैं तीनों लोकों में विचरण करो, बुद्धि से तीनों लोकों में विचरण करो। कभी बाबा कहते हैं पांच स्वरूप में विचरण करो, ये चक्र लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, है ना। तो ये बौद्धिक एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, और चौथी एकाग्रता, चौथी एकाग्रता है भावनात्मक एकाग्रता। भावनात्मक एकाग्रता, क्योंकि बाबा को जो याद करना है, किससे याद करना है? दिल से याद करना है। तो दिल से याद करने के लिए भावनाएं, जितनी हमारी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ है, भावनात्मक एकाग्रता हमारे अंदर है, उतनी हमारी एकाग्रता में रस भरेगा। जो योग लगाते हैं ना, उस योग में जैसे कि उस रसना का अनुभव करेंगे। बिना भावना के रस की अनुभूति नहीं होती है। तो इसीलिए जब ऐसी एकाग्रता आ जाएगी तो एक के अंत में समाना, भावनात्मक एकाग्रता से एक के अंत में समाना सहज हो जाएगा। जहां मन की, मन का एकांत जिसको कहा जाए, मन शांत शीतल एकदम, जहां संकल्पों की एकाग्रता आ जाएंगी सहजता से, और जहां हम सहजता से बाबा के स्नेह में समा जाएंगे, खो जाएंगे एकांत में, एक के अंत में, है ना, सर्व संबंधों का सुख लेते हुए। तो इसीलिए ये चारों प्रकार की एकाग्रता बहुत जरूरी है, तभी एकांत में सहजता से जा सकेंगे। तो शारीरिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता और भावनात्मक, ये चारों का समूह, ये है योगी जीवन, ये योगी जीवन है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। इक तेरी।